श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवी शक्ति या चेतना हूँ। तात्पर्य, पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ के जीवों के में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। एक छोटा सा कमेंट यह है कि जो हमारे अंदर ज्ञान शक्ति होती है, ये समझना कि मैं हूं और मैं अन्य लोगों से अलग हूं, ये भी भगवान से ही आती है। आचार्य लोग उसको समझाते हैं। टेक्स्ट नंबर 23। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखिरणामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तात्पर्य, 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। तो इसमें कुछ अधिक समझाना नहीं है, लेकिन इसमें एक गलती जरूर करते हैं लोग कि वो सोचते हैं कि देखो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं शिव हूं। हाँ, तो भगवान अगर शिव कह रहे हैं अपने आप को, तो फिर भगवान अपने आप को कुबेर भी कह रहे हैं। अर्थात शिव जी के पास जो शक्ति है या कुबेर के पास जो शक्ति है, जिसके पास भी कोई विभूति है, वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, ये भक्त को सोचना चाहिए। पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशय में समुद्र हूँ। तात्पर्य, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस जगत में राजा को भी भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि भगवान के द्वारा उसको शक्ति प्राप्त होती है लोगों के ऊपर शासन करने के लिए। उसी प्रकार से इंद्र भी सभी स्वर्ग के राजा हैं और उनको भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। इसमें कुछ समझाना नहीं है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण की ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। एक बात ध्यान देने वाली है कि व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जब इतने महान महान लोग भगवान से आए हैं, तो भगवान स्वयं कितने महान होंगे, ये विचारणीय बात है। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मी स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन या जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य धनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। ये इंटरेस्टिंग है कि अगर देवताओं की भी पूजा होती है तो उसमें ओंकार जरूर होता है, और इसके द्वारा जो देवता का उपासक है वो जानता नहीं है कि भले ही वो देवताओं की उपासना कर रहा है, लेकिन भगवान विष्णु का उच्चारण किए, आवाहन किए बिना देवता कुछ नहीं दे पाते। तो ओम जो है वो भगवान की अभिव्यक्ति है, शब्द रूप है। ओके। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, इस संबंध में भक्ति संदर्भ में भी बात उठाई गई है कि जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ क्यों है। अन्य यज्ञ जितने भी हम करते हैं, कर्म या कर्मकांड या जो भी करते हैं, उसमें पहली बात तो वस्तुओं के दोष की बहुत संभावना है। जो वस्तु उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है वो खराब हो, गलत हो, और साथ साथ स्थान और पुरोहितों की अपेक्षा होती है कि वो अच्छे होने चाहिए। लेकिन हरि नाम में केवल जीभ चाहिए और कान चाहिए। जो व्यक्ति बोले, चाहे कोई शूद्र से भी निम्न परिवार का क्यों ना हो, वो व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा है। और दूसरा है कि साक्षात भगवान के संपर्क में आता है। और क्या बातें हैं, वैसे तो बहुत महिमा है भगवान के नाम की। और महिमा है कि इसमें सफाई का कोई मतलब नहीं है। आप अपवित्र अवस्था में हो, पवित्र अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम जप करके व्यक्ति महान लाभ को प्राप्त कर सकता है। अपितु भागवत में इस बात को बताया गया है कि एक नाम जप करने वाला सारे यज्ञ कर चुका है, सारी तपस्या कर चुका है, सारे तीर्थ भ्रमण कर चुका है, ये समझ लेना चाहिए। अन्यथा उसके जीभ पे भगवान का नाम नहीं आ रहा होता। तो इसलिए, और एक और बात है कि यज्ञ मतलब होता है वो क्रियाएं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जा रही है। तो भगवान स्वयं यहां बोल रहे हैं कि तुम जो भी कार्य करते हो, जैसे हम सब भक्त लोग भजन करते हैं, सेवा करते हैं, सारे कार्य में सर्वश्रेष्ठ सेवा जो है वो है भगवान के नाम का जप करना। तो जो सबसे अच्छा यज्ञ है उसको हमें सबसे खराब तरीके से नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि हमें सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है, अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी सचल नहीं है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। अब ये प्रश्न मत करिए कि अरे हम ये कैसे माने कि मेरु पर्वत चलता है, हमने तो कभी देखा नहीं है। हमने देखा ही कितना है, कोई ब्रह्मा तो ही ना है। तो इसलिए सृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, शास्त्र का आधार लेकर के हमें स्वीकार करना चाहिए। अश्वत्थ स्वर्व विक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं। वृक्ष मतलब इसे काटा जाता है। और देवर्षियों में नारद हूं। इसलिए नारद जी को कभी कॉमेडियन नहीं सोचना चाहिए। बहुत बार लोग नाटक में या कभी अपने वचनों के द्वारा ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि नारद मुनि कोई कॉमेडियन है। नहीं, वो भगवान की विभूति हैं और भगवान की भक्ति शक्ति उनके हृदय में है, भक्ति के आचार्य हैं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष सबसे सुंदर, सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं, पवित्र माना जाता है। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं, क्योंकि वो विश्व के सबसे बड़े प्रचारक भी हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। मतलब यहां जो कपिल मुनि की बात आ रही है, तो लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। एक कपिल मुनि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हुए और दूसरे कपिल मुनि नास्तिक हुए थे। तो ये नास्तिक मुनि जो है वो भगवान के अवतार नहीं है, क्योंकि नास्तिकता से किसी को शुभ प्राप्त नहीं होता है, किसी का शुभ नहीं होता है, बल्कि अमंगल होता है। तो यहां जिस मुनि की बात हो रही है वो है देवाहुति नंदन कपिल, सन ऑफ मदर देवाहुति। तो इस चीज को, उनका जो सांख्य दर्शन है वो आस्तिक सांख्य है, और उसको आप श्रीमद् भागवतम से पढ़ सकते हैं। उच्छय स्रवा समश्वानाम विद्धिमाम अमृतोत उद्भवम एरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्छय स्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं एरावत हूं तथा मनुष्यों में राजा हूं। तात्पर्य, एक बार देवों तथा असुरों में समुद्र मंथन ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो इसमें कथा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। जो भी कुछ महत्वपूर्ण जगत में है वो भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान की विभूति है। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। इसी कारण से राजा को सम्मान देना चाहिए, भगवान का प्रतिनिधि समझते हुए। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सीखना के लिए मिल रही है कि पहले जमाने में जो राजा हुआ करते थे केवल भोग विलासी नहीं होते थे, अपितु राजर्षि हुआ करते थे और उनकी इंद्रिय संयम में 25 साल ट्रेनिंग होती थी, 5 से लेकर के 25 साल, मान लीजिए 20 साल, और उसके बाद उनको राजा का पद मिलता था तो बड़े निरासक्त भाव से वो उसको स्वीकार करते थे। आज की तरह नहीं है कि वो जो प्रजा का वो शोषण करते रहे। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और वहां व्यक्ति बात कर रहे थे कि अरे किसी को भी हम चुने वो सभी कोई हमको लूटने के लिए ही रहते हैं। तो वास्तवतः प्रजा भी बड़े असमंजस में है कि चुने किसको, क्योंकि जिसको भी चुनते हैं वही अपना कैसे कहना चाहिए उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। कारण यही है, दोष यही है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से है कि लोगों को इंद्रिय संयम करने की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है और इसी कारण से ऐसी स्थिति हो गई है। तो यथा पहले होता था यथा राजा तथा प्रजा, मतलब राजा अगर धार्मिक है तो वैसी प्रजा हो जाती थी। अब क्योंकि जनतंत्र है इस कारण से यथा प्रजा तथा राजा हो जाती, क्योंकि प्रजा जो है गड़बड़ हो रही है और प्रजा के मध्य में से किसी को चुना जा रहा है और उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है शास्त्र के अनुसार, तो धर्म के पथ पे नहीं चल पाता है और लोग दुखी रहते हैं। आगे के श्लोकों को हम चर्चा बाद में करेंगे।